इंद्र 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 बोल रहा है, राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, मुसीबत में फंसने के बाद वो हमें सीख दे रहा है ना, सीख दे रहे हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, गृहिम आधम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये 11वें स्कंद के 10-20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। ये उद्धव गीता है, उद्धव गीता, भगवान ने उद्धव को जो गीता सुनाई थी वो है ये। हम सभी बद्ध जीव ज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह एक सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है तो यह सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करे, क्योंकि उसमें जीव का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्य समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भले ही कोई श्री कृष्ण को, आगे आ जाओ, आप लोगों को नींद आ रही है, आगे आ जाओ, आगे पास में आ जाओ, इधर आप उठ के आ जाओ, उधर ध्यान से सुनो। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य, ध्यान से सुनेंगे बहुत कुछ मिलेगा। आगे आ जाओ, आगे पीछे बैठोगे तो फिर ध्यान इधर उधर जाएगा। भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न माने, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अनाधिकारिक चिंतन के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश अमरीकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनको लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के रूप में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, अश्मा मय पलवो ये शाम ते यथा भजंतम पलवम अनुभजंती तथेति राज नित्य उपदृष्टि उप दे त्रिशुम स्वयं विहेशु कोपो व्यंजिता। यदि यह समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावना अमृत की शरण लेनी चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम्। ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुदाय हरे कृष्णा। तो कुछ पॉइंट्स याद है किसी को? मैं दोबारा पढ़ूं? सुना कुछ? कुछ समझ आया नहीं? याद है किसी को? किसी है? दोबारा पढ़ा जाए तात्पर्य? फिर तात्पर्य ही नहीं पता, श्लोक ही नहीं पता, तो फिर क्लास क्या होगी उसके ऊपर? क्या क्या कहा जा रहा है श्लोक में? शाबाश, वेरी गुड। नेताओं के बारे में बोला है तो, क्योंकि राजा इंद्र जो है देवताओं के राजा है ना, तो बता रहा है कि मैं तो नेता हूं, देवताओं का नेता हूं, देखो क्या करूंगा, देवता भी डूबेंगे मेरे साथ। अब मैंने जो कुकर्म किया है, गलत काम किया है, तो इसलिए वो शिक्षा दे रहा है। बहुत जैसे चोट खाया हुआ जो व्यक्ति होता है, जो जिसको लगी होती है, बीमार व्यक्ति ज्यादा बता सकता है ना बीमारी के बारे में, तो भुगता है वो, तो है ना। तो इसलिए वो बता रहा है कि हमें एक बार तात्पर्य श्लोक दोबारा पढ़ता हूं, उसका अनुवाद ध्यान से सुनिए। राजा इंद्र ने कहा, अच्छा ये आ गया, अगला श्लोक है। जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों का विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, है ना, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं, उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में तैर सकती है, वह तो यात्राओं पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अन्यायियों समेत नरक को जाते हैं। अंधा यथा अंधेर उपनीय माना, है ना, प्रहलाद महाराज भी यही कह रहे हैं। अंधा व्यक्ति अंधों को लीड कर रहा है, अंधा व्यक्ति अंधों का लीडर है ना। या जैसे भागवतों में बताया कि पशुओं का समाज है, पशुओं का समाज है, तो वो किसको लीडर्स बनाएंगे पशुओं के समाज में? है पशु को ही बनाएंगे, जो सबसे बड़ा पशु वो लीडर नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि ये जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, ये पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं है। पशुओं के लिए भगवान ने पशु वाला शरीर बनाया है, है? उसको मोटे तौर पे कहते हैं वो भोग योनि है, भोगों के लिए बना है। इसलिए पशुओं को कोई बीमारियां नहीं होती। नहीं, सुअर जो है बिस्लरी का पानी पीता है, है? गटर का पानी पीता है, उसको डिसेंट्री होती है। खाता क्या है वो? गूं खाता है। मोटा होता कितना मोटा होता जाता है। नहीं समझ में आई बात? भगवान ने शरीर बनाया ऐसा, गूं खाओ, गटर का पानी पियो, मोटे हो जाओ, है? कुत्ता है, बंदर है, एक पत्नी व्रत धारण करता है। बंदर देखते हो आप, इतने बंदर हैं, कितनी बंदरियां होती हैं इनकी। इनको एड्स की बीमारी क्यों नहीं होती? नहीं समझ आ रही बात? जंगल में लगा होता है ये, जैसे पोस्टर इश्तिहार लगे होते हैं, जगह जगह जाओ इश्तिहार लगे होते हैं, एक पत्नी व्रत, यौन संबंधों सुरक्षित यौन संबंध लगे होते हैं यहां पर। ये जंगल में क्यों नहीं लगा होता कुत्ते बिल्लियों के लिए? समझ आ रही है? भोग योनि बनाई है, भगवान ने कहा ये करो, तुम्हें शरीर ऐसा दिया है, गटर का पानी पियो, कुछ भी करो, तुम कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी। तो फिर मनुष्य का शरीर लेके क्यों घूम रहे हो? अगर भोग ही भोगने हैं तो कुत्ते बिल्ली का शरीर ज्यादा अच्छा है, बीमारियां तो नहीं होंगी कम से कम। यहां तो थोड़ा सा इधर से उधर किया, नहीं तो बीमारी पकड़ लेती है। नहीं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया और बीमारी ने पकड़ लिया है प्रभु जी। तो यही यहां पे बताया है, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये भोग योनि नहीं है, ये तपस्या के लिए मिला है, है ना। ऋषभ देव जी भी कह रहे हैं पांचवें स्कंद में, है? यस, तपो दिव्यम पुत्र का, तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्रो, हे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटो, ये जो शरीर मिला है तपस्या के लिए मिला है, दिव्य तपस्या के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला। लेकिन हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे जो नेता हैं वो खुद तो डूब ही रहे हैं, प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं, वो खुद तो डूब ही रहे हैं। आपको दिखाते हैं, चलो जी हम आपको तैरा के ले जाएंगे, नाव देखो कितनी सुंदर नाव है, कितनी बढ़िया नाव है, है? आप भी आकर्षित हो जाते हो, बहुत सुंदर नाव है ये तो, कितनी चमक रही है, कितनी बढ़िया है। लेकिन वो उसमें जैसे ही पानी में उतारेंगे वो डूब जाएगी और आप भी डूबोगे साथ में। तो उनके चक्कर में नहीं आना, जो जो नेता है तरह तरह के आपको धर्म भी बताएंगे, ये वाला आर्ट ऑफ लिविंग है गुरुजी, तरह तरह के धर्म है। बाकी सब का सबदा आकार एक तू ही निरंकार है, बाकी सबदा आकार एक तू ही निरंकार। नहीं समझ में आया? बाकी तो सबका आकार नजर आ रहा है, तू ही निरंकार है, बस तू ही निरंकार है ना। ऐसे मायावादी लोग जो है तरह तरह, ये है पत्थर की नाव वाले, नाव दिखाते हैं आपको, नाव है, ये नाव नहीं है, पत्थर है, वो डूब लेगा। भगवान का नाम थोड़ा लिखा हुआ है, राम राम लिखा हुआ है कि सेतु बन के तैर जाएंगे समुद्र में पत्थर। प्रभुपाद जी ने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो आंदोलन दिया है ये है, ये तैरा के ले जाएगा आपको। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता, जीवन को उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावना अमृत की शरण लेनी चाहिए। ये है, इसको हमें सीरियसली लेना है, इसको हमें अच्छी तरह से पकड़ना है। तपस्या से डरना नहीं है। वो देखो ब्रह्मचारी है, पीछे बैठे हुए हैं, हाथ है माला में और सो रहे हैं आराम से। प्रभु जी उठाना जरा, आओ आगे आओ, पास बैठो, उधर आओ, चेयर ले आओ अपनी, यहीं आओ, चेयर को उठा के यहां ले आओ पास में, जानता हूं मैं इनको, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रभु जी, आ जाओ चेयर ले आओ ना, ये चेयर तो यहां पर है, देखो इधर आ जाओ, शाबाश लेके आओ, इधर आओ पास में आओ ना, प्रभु जी आपके दर्शन करना चाहता हूं, आप दर्शन से हमें लाभ कर, आओ, इतना चमकता चेहरा आपका, प्रभावशाली, तभी तो पकड़े गए आप सारे ग्रुप में, आप कैसे पकड़े गए, प्रभावशाली चमकता चेहरा आपका, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ने पकड़ लिया था चैतन्य महाप्रभु को, सो सो सूर्य निकल रहे हैं, आप पास में आ जाओ ना प्रभु जी, आशीर्वाद नहीं देना चाहते, माफ करना प्रभु जी को, गलती हो गई तो माफ करना। तो इसी तरह से हमें समझना है इन चीजों को कि जो प्रभुपाद जी ने रात रात पर जागकर इतना प्रयास किया है, ये सोसाइटी बनाई है, क्योंकि प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी, प्रभुपाद जी तो भगवान के धाम जा ही रहे थे, तो क्या जरूरत थी, उनको थोड़ा कुछ मिल रहा है इसमें से, तो हम लोगों के लिए उन्होंने ये तपस्या की है, तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना है, हमें पूरा लाभ उठाना है और समझना है कि कैसे जो समाज है हमें, कैसे हमें बुद्धू बना रहा है, कैसे ठग रहा है हमें, पत्थर की नाव दिखा के कैसे हमें ठग रहा है वो है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं को समझते हैं ना, ठग, छुपे हुए जो नेता नहीं है वो, मतलब नाटक कर रहे हैं, नेता का नाटक कर रहे हैं, नेता तो है ही नहीं, नेता व्यक्ति क्या होता है, लीडर कौन होता है, ये तो अपना लोगों को गुमराह करके मैनिपुलेट करके ये नेता बन जाते हैं, ये असली नेता थोड़ा है ये। सबसे बड़े नेता जो हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो है नेता, वो है लीडर, असली हीरो है ना। ब्रजवासियों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है और वो उनको पुकारते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यहां तो नाटक करते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, बस भलेखे में रखते हैं आपको, इल्यूजन में रखते हैं, धोखा देते हैं, और क्योंकि हमने भी शरण नहीं ली हुई ऐसे अच्छे नेताओं की, असली नेताओं की, हम भी गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हमें तो मौका है, हमें तो, हम तो भाग्यशाली हैं, इस कौन में जो व्यक्ति पक्का हो जाए उसको दुनिया में कोई ठग ही नहीं सकता, वो ठग लेगा सबको, सारी दुनिया में ठग के आ जाएगा लोगों को, उसको कोई नहीं ठग सकता है ना, क्योंकि सबसे बड़े ठग कौन है, तो फिर कृष्ण, जिसने कृष्ण की शरण ले ली वो कैसे ठगा जाएगा, तो वही शरण लेने के लिए श्री प्रभुपाद जी हमें उत्साहित कर रहे हैं। और यहां यही बताया है कि सबसे पहले हमें छद्म नेताओं से बचना है, छद्म नेता कोई भी हो सकता है। क्या हो गया प्रभु जी, क्या हो गया, फिर आप नीचे बैठ जाओ ना, आप कुछ इधर उधर करोगे सबको पता लगेगा, आप नीचे बैठ जाओ, क्योंकि आप इधर उधर करोगे लोगों को लगेगा पता नहीं क्या, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। थैंक यू, आपको समझ आ रही है मेरी बातें, सबसे पहले छद्म नेता, छद्म नेता कोई भी हो सकता है, है ना, आपके माता पिता, भाई, अड़ोसी पड़ोसी, आपके टीचर, कोई भी हो सकता है छद्म नेता। जरूरी नहीं है छद्म नेता का मतलब ये पॉलिटिकल लीडर ही, जो नेता नहीं है लेकिन नेता बनने का ढोंग कर रहा है वो। इसीलिए पांचवें स्कंद में बताया है कि कैसे जो है, ऋषभ देव ही बोल रहे हैं, कैसे जो है पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर आपने जो डिपेंडेंट हैं, आपके जो अनुयायी हैं, उनको आप भगवान के धाम नहीं लेके जा सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है माता पिता गुरु बनने का, कोई अधिकार नहीं है। तो नेता जो है इनको त्यागना पड़ेगा, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, भगवान के रास्ते से हटा रहे हैं। वो घर में भी हो सकते हैं, जैसे हमने कई बार देखा है व्यक्ति जो है इंस्पायर हो जाता है, इंस्पायर होके माला ले लेता है, वो भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, वो घर वाले कहते हैं क्या हो गया अभी तो यार, तेरे खाने कमाने की उम्र है, क्या हो गया तुझे, सारा दिन हरे कृष्णा करता रहता है तू, और कोई काम ही नहीं है, वो बुढ़ापे में देख लेना ये उम्र है कोई भक्ति करने की। वो बेचारा अच्छी बली माला ले लेके चलता है लेकिन रख देता है, परे रख देता है, तक आ गया। छद्म नेता कौन थे? पिता माता पिता ही निकला है छद्म नेता। इसलिए बहुत जरूरी है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता बहुत जरूरी है भक्ति में, दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। दृढ़ता नहीं होगी कोई भी बहका देगा हमें। तो छद्म नेताओं से हमें ठगे नहीं जाना, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनका पहले त्याग करना है, उनकी बातों को त्याग करने का मतलब उनकी बातें नहीं माननी हमें, वो जो कह रहे हैं उसको नहीं सुनना हमें। तो तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे कहते हैं कि जी एबॉर्शन लीगल भी है इलीगल भी है, लीगल एबॉर्शन इज ओके, नहीं समझ आई बात, ये नेता कैसी बातें करते हैं कि लीगल एबॉर्शन ठीक है, मतलब अबॉर्शन कहते हैं उसको, ये नहीं कहते कि हम हत्या कर रहे हैं। कभी भी हत्या जो है लीगल और इलीगल हो सकती है, हत्या तो हत्या है। ये है छद्म नेता जो है, आपको ऐसी ऐसी उनको त्यागना पड़ेगा, उनके विचारों को उनकी बातों को त्यागना पड़ेगा। तरह तरह की बातें करेंगे, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, असली बात है बेटी पढ़ाओ बेटी गवाओ, नहीं क्या कहते हैं प्रभु जी, सच बात है ऐसे होगा? पढ़ाई लिखाई के कारण तो आजकल मैरिजेस टिक ही नहीं रही, वो कहते हैं हम तुम्हारे से कम है, हम तुम जितना पढ़ो मैं भी पढ़ी हूं, तुम एमए मैं पीएचडी, तुम घर में बैठो मैं नौकरी करने जाऊंगी, चलो सफाइयां करो। बेटी पढ़ाओ बेटी गवाओ, दोनों तरफ से गई बेचारी, यहां से शादी होकर चली गई, उधर ससुराल में अब बन नहीं रही, क्यों? क्योंकि हम भी हैं, हम कोई कम है क्या? ये छद्म नेताओं को छोड़ना पड़ेगा, इनके विचारों को छोड़ना पड़ेगा माता जी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। ये प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाम सामने लाते हैं, पत्थर की नाम है। भगवान ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है, भगवान ने बनाया है तुमने बनाया है, बराबर करने से बराबर हो जाओगे क्या है? बराबर है तो फिर आदमी को नहीं प्रेग्नेंट हो जाते, आदमी भी थोड़े से बच्चे पैदा करके दिखाएं, बराबर कर दिया ना आपने। छद्म नेताओं ने कहा बराबर जी, सब बराबर है, सब इक्वल है, और लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं होता जी, तो फिर लड़के भी थोड़े से बच्चे पैदा करें। मूर्ख है ये, पत्थर की नाव पे आपको डुबो देंगे, इनको त्यागना है, इनके विचारों को त्यागना है। ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, तब हमें समझ आएंगी ये बातें। अगर इनको त्यागेंगे नहीं तो फिर दो नाव में पैर रख के हम डूबेंगे ही डूबेंगे। दो नाव पे पैर रखना भी पत्थर की नाव जैसी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले साफ कहा इन छद्म नेताओं की, इन छद्म नेताओं को त्यागना है। ये नेता नहीं है आपके, हमारे नेता है भगवान, और भगवान की परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं प्रमाणिक, वो हमारे नेता हैं। उनकी बातों को सुनना है हमें, उनकी बातों को समझना है और उनकी बातों पे चलना है। हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और 100% इस मनुष्य जीवन का हम इस्तेमाल करेंगे और भगवान के धाम जाएंगे, सफल होंगे। कई लोग ऐसे हैं जैसे प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि अगर आप भगवान को, भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न माने, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है। आप जितने पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो क्या करते हैं, भगवद गीता की तो पढ़ के बस भगवान का नाम नहीं लेते, उनके जो है चीजों को फैला रहे हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो इसलिए भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, अगर हम पूर्ण रूप से मानते हैं, भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो सीन ही अलग है। अगर हम पूर्ण समर्पित नहीं भी हैं, उनको भी बहुत फायदा करते हैं ये भगवद गीता के उपदेश जो हैं। और बाकी जो उपदेश है वो तो हमें डुबोएंगे, हमारा जीवन, हमारे डाइवोर्स रेट बढ़ेगा उनसे, सुसाइड रेट बढ़ेगा, लोगों में डिप्रेशन बढ़ेगा, आत्महत्या की दर बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, लोग समझेंगे कि बस पैसा कमाना ही सब कुछ है, मेटेरियलिज्म सब कुछ है। शरीर जो है, ये शरीर तो हमें समझना चाहिए नाशवान है। शरीर की तो जितना भी आप ध्यान रख लो, कितना भी ध्यान रखो, ये तो डेड है, डेड बॉडी है। ये डेड बॉडी को जितना मर्जी सजा लो, असली चीज जो है वो है अंदर जो जीवात्मा है, ये असली चीज है, ये है हम। अगर संसार में कुछ है तो वो है जीवात्मा और भगवान का नाम, यही है जीवित, बाकी तो सब डेड है, सब भौतिक है। नाम बिना किछु नाई एक, चौदह भुवन मांजे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं। नाम बिना कुछ ना ही एक, भगवान का नाम ही है एक जिसे हमें महसूस करना चाहिए, लेकिन हम नाम को लिविंग नहीं समझते, हम नाम को बस ऐसे जपते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्योंकि ये अमेरिका में लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश अमेरिकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उभरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, चाहते तो हैं इतना जो कैओस है सारे समाज में, अव्यवस्था फैली है, उससे उभरें। लोग एडिक्ट हो रहे हैं, लोग शराब के और ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, तो वो ठीक हो, अव्यवस्था जो फैली है, क्राइम ना हो, ये सारी चीजें ठीक हो, लेकिन क्या है, फिर भी वो अमरीकी लोग, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं, इससे उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन समर्थन किनका करते हैं, जो ये पत्थर की नाव, पत्थर की नाव मतलब जो ये समझ रहे हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, ये समझना, शरीर के लिए प्रयास करना, शरीर की उन्नति करना, ये जो है पत्थर की नाव जैसे है। शरीर के आधार पर सारा समाज जो है, शरीर के आधार पर ही है सब कुछ, है ना, मैं और मेरा, इसी के आधार पर सारा समाज, समाज की पॉलिसीज और जो नेता हैं वो भी इसी के आधार पर चल रहे हैं। आपको वही प्रलोभन देते हैं, हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे, ये दे देंगे आपको, शरीर के आधार पर। जीवात्मा आत्मा के उन्नति के लिए वो, उनको पता ही नहीं है आत्मा परमात्मा के बारे में, और उन्नति क्या करेंगे वो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और हमारा आंदोलन भी हरे कृष्ण आंदोलन से जाना जाता है, इसको अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं, इसको अगर हम इसकी शरण लेते हैं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे। नाम जीवित जीवित चीज है, डेड नहीं है ये, मृत नहीं है ये। भगवान के नाम और भगवान एक ही वस्तु है, एक ही चीज है। ये हमें फील करना है, वो तभी होगा जब हम इसको ध्यान पूर्वक करेंगे, अटेंटिवली अटेंशन देंगे इसको, भगवान के नामों को बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द ध्यान से बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, यहां की नहीं है, यहां का नहीं आवाज, ये भगवान के धाम से आई है ये आवाज, है ना। ये इसीलिए भगवान से ज्यादा भगवान का नाम दयालु है कि भगवान जो हम तो नहीं नजर आते क्योंकि हम कंटेमिनेटेड है, हमारी आंखें जो हैं वो कंटेमिनेटेड है, मेटेरियलिज्म से भरी हुई है आंखें कान, सारी सेंसेस हमारी भौतिकता से भरी हुई है, है? विकार है उनमें। लेकिन ये भगवान का नाम जो है सब कुछ होते हुए भी फिर भी आता है, हमारी जिह्वा पे आता है, हमारे हृदय में जाता है अगर हम प्रयास करेंगे, और हृदय में जाके सफाई करता है ये जमादार का कार्य करता है ये, पता है, हमारे कानों से हृदय में घुस जाएगा और हृदय में सफाई करता है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष झाड़ू मारता है, झाड़ू देखो। इसलिए भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, इसी कारण से बड़ा ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, तो इसका लाभ उठाना है। जब इसको हम नाम को जपतेंगे जपेंगे 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 तो ऐसा होएगा एक दिन कि ये जीवंत हो उठेगा, लाइव हो उठेगा ये नाम। जैसे भगवान की अर्चय विग्रह है, भगवान की अर्चय विग्रह और भगवान में कोई फर्क नहीं है, एक ही वस्तु है, लेकिन हमारे लिए ताकि हम देख सके भगवान को, वो ऐसे रूप में आ जाते हैं। भगवान की ये कृपा है, तो भगवान कृपावश हमारे सामने आ जाते हैं कि हम कंटेमिनेटेड है, हम देख नहीं पा रहे, लेकिन इस रूप में आ जाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं। उसका लाभ उठा के हमें उस स्टेज में पहुंचना है जहां पे हम भगवान को साक्षात देख सके। वो कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, वो कुर्सी में जो भी बैठता है नींद आ जाती है उसको, है ना। पहले वो देखो अब ठीक है, उसको उनको नींद नहीं आ रही, वो ब्रह्मचारी जो बैठे हुए थे, और ये प्रभु जी आगे बैठे, प्रभु जी को भी नींद आनी शुरू हो गई। नारद कुंड प्रभु है ना, ओके। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है कि भगवान के नामों को हम ध्यान पूर्वक जप करें। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग क्लास में जप कर रहे होते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, क्लास में जप करने का क्या फायदा, आप सुन ही नहीं पा रहे, कोई और बहुत नुकसान है, क्योंकि आप क्लास भी नहीं सुनोगे जप भी नहीं सुनोगे, डबल नुकसान है आपको। अगर आप जप करना चाहते हो तो क्लास में मत आओ, और अगर आप क्लास सुनना चाहते हो तो जप कर मत, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे दो बातें नहीं सुन पाएगा, एक ही समय कान जो है दो चीजों को नहीं ग्रहण कर पाएगा। और सिर्फ हमें सुनना नहीं है, लिसन करना है, लिसन करने का मतलब यह है कि हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, मतलब मन को भी लगाना है, सिर्फ ये नहीं कि चैंटिंग मैकेनिकल कर रहे हैं हम, है ना। एक व्यक्ति की बात याद आ रही है, उसको मैंने कहा भैया इतना परेशान है तू तो माला क्यों नहीं घुमाता, माला घुमाया कर तू। उसने कहा ठीक है गुरुजी, माला घुमाया करेंगे। थोड़े दिनों बाद मिला, मैंने कहा कितनी माला कर रहे हो भैया, कितनी माला होती है। कहते कितनी होती हैं, वो साइकिल के पहिए पे बांध दिया मैंने, बस घूमती रहती है सारा दिन, कितनी क्या सैकड़ों हो जाती है। ऐसे नहीं माला घुमानी, कहीं ऐसे माला घुमाते रहते, ऐसे माला घुमाने का क्या फायदा। माला जब घुमानी है तो नामों को सुनना है, हृदय से प्रार्थना करनी है, मन को भी वहां लेके जाना है, सारी चीजें एक ही लाइन में होनी चाहिए, है ना। फिर देखो, फिर जो है ये नाम जो है अपना कार्य करेगा ना। मन को तो आप टच ही नहीं कर रहे, मन को स्पर्श नहीं कर रहे उस साउंड से, तो मन कैसे आपका वश में आएगा? मन को स्पर्श नहीं कर रहे, उसका दोष थोड़ा है, नाम का दोष थोड़ा है। इतने दिनों से माला कर रहे हैं, मन अभी भी विचलित है, मन घूमता है, शांत नहीं है। और मन को तो आपने स्पर्श नहीं कराया माला से, नाम से, तो अछूता ही रह गया। क्योंकि जब माला कर रहे होते हैं मन घूम रहा होता है जगह जगह, जहां भी जाता है जाने देते हैं हम, है ना। क्यों? क्योंकि हमने नेताओं की बात सुनी हुई है। नेता क्या कहते हैं? ओ मन को पिंजरे में मत डालो, ओ मन का कहना मत टालो, ओ मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। उन नेताओं को त्यागो, ऐसे जो बोलते हैं गोली मार दो उनको। ओ मन को वश में करना है, मन जीता जग जीता। वो तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपको, डू इट डू इट, बाद में जाओ नरक में जाओ, फिर वो भी वो नहीं बताते आगे। मन को वश में करने से मन हमारा दोस्त बन जाएगा, कुछ भी करेगा। आप जो ये देखते हो बड़े बड़े कार्य, श्रील प्रभुपाद जी ने इतने बड़े कार्य किए हैं, अलौकिक कार्य किए, क्योंकि मन इनका पूर्ण रूप से इनके वश में था, पूर्ण रूप से वश में था। मन एक जिन की तरह, जिन होता है ना, सुना है ना आपने, बड़े बड़े कार्य कर सकता है, बड़े बड़े कार्य, लेकिन वो वश में हो, अगर वश में नहीं हो तो तुम्हें खा जाएगा वो, तुम्हें खा जाएगा वो। और जिसका मन वश में है वो कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े कार्य कर लेता है वो। तो मन को वश में आ जाएगा बहुत आसान है, इसको टच करवाओ, इसको स्पर्श करवाओ, किससे? ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन से, है ना। मन को, हृदय को, हृदय भी आएगा। हृदय का मतलब है कि हृदय से भगवान को प्रार्थना करो, भगवान आई नंद तुनज किंकरम पतितम माम विषमे, भगवान बुदो, गिर गया हूं भगवान, आपका आपका हूं, आपका दास हूं, किंकर हूं, गिर गया हूं, दोबारा मुझे उठा लीजिए, आप ही उठा सकते हैं, उठा लीजिए मुझे, अपने एक चरणों की धूली का कण बना लीजिए, इस विषय सागर में गिर गया हूं। इस तरह से प्रार्थना करनी है। जो शिक्षा अष्टकम है ये तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक बोला है, इसको अगर हम ध्यान करें, है ना, तरनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अगर एक ये भावना हमें रखे कि हमेशा हमें दूसरों को मान देना है और खुद मान की हमें परवाह नहीं करनी। मान अपमान के चक्कर में तो सारी दुनिया पड़ी हुई है, और है क्या? उसने मेरी इंसल्ट कर दी, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी उसने, है? ये तो जो हमारा कोटा है मान अपमान का, वो हमें मिलना ही मिलना है। जितना लिखा हुआ है ना मान अपमान, वो मिलेगा ही मिलेगा, आप बच नहीं सकते, वो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। वो जैसे दो बाप बेटे थे ना, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, तो लोगों ने उसकी उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। ये देखो कितने निर्दयी हैं ये, हैं? वो घोड़ा बेचारा दबा जा रहा है, वो दोनों तन के बैठे हुए हैं इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई अपमान हो रहा है, तो बेटे को नीचे उतार दिया और पिता जो है घोड़े पे बैठा हुआ है, फिर अपमान करना शुरू कर दिया लोगों ने। कहते हैं देखो ये कैसा बाप है, ये बेचारा सुकुमार सा बच्चा तो पैदल चल रहा है और ये घोड़े पे तन के बैठा हुआ है। उसने फिर बेचारे ने बच्चे को बिठा दिया, फिर कहते हैं देखो बच्चे को देखो, आजकल के बच्चों को देखो, माता पिता की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो बेचारा बूढ़ा बाप जो है पैदल चल रहा है, ये तन के बैठा हुआ है घोड़े पे। अब बेचारे दोनों उतर गए, वो घोड़ा साथ साथ चल रहा है। कहते हैं अच्छे मूर्ख है ये, वो घोड़े पे घोड़ा किस लिए लेके चल रहे हो, घोड़ा साथ किस लिए लेके चल रहे हो? फिर उन्होंने क्या किया, घोड़े को अपने सिर पे रख लिया। हमारा भी हाल होगा अगर मान अपमान के चक्कर में पड़ेंगे तो, घोड़े को रखना पड़ेगा सिर पे, घोड़े का भार सहना पड़ेगा, घोड़ा या गधा जो भी। ये मत करना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। क्या मान अपमान, जो बड़े बड़े महा भागवत हुए हैं वो तो ऐसे रहते थे कि जैसे अपमानित होम हो, वो तो ऐसे ही रहते थे। भरत महाराज, जड़ भरत, उन्होंने देखा कि जब मैं राजा था तो राजा के कारण ही तो मैं फंस गया है, हिरण बनना पड़ा मुझे, एक हिरण के चक्कर में फंस गया मैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, हिरण के चक्कर में फंस गया। अभी तो मैंने ऐसे रहना है कि लोग मुझे थूके, धिक्कारें मुझे, ऐसे रहना है मैं, भगवान के धाम चले गए। आपको क्या चाहिए, यहां आपकी समाधि बन जाए, मान लो शांति वन में बड़ी अच्छी समाधि, लोग चक्कर लगाए आपके समाधि के, और अगला जीवन कुत्ते का मिले स्वीडन में, या यहां रहो आप बिल्कुल जड़ भरत की तरह और भगवान के धाम जाओ, कौन सा पसंद है, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। ये है पत्थर की नाव पे बैठना, पत्थर की नाव का मतलब यही है कि यहां समाधि बन जाए शांति वन में, अगला जन्म चाहे कुत्ते का मिले, क्या फर्क पड़ता है। जानते हो ऐसे व्यक्ति को, बाद में बताऊंगा, सबके सामने नहीं, ऐसे भी लोग हैं, यहां तो उनकी बड़ी समाधि बनी हुई है, बहुत ऊंची समाधि बनी हुई है, ऐसे नहीं। यहां जैसे भी बीते जीवन क्या है, जैसे अगर जेल से बाहर निकलना है, आप पढ़ो स्टोरीज, पढ़ो जो जेल से बाहर निकले हैं, आप हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे उन्होंने क्या क्या कष्ट सहे हैं, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर निकलना था, टॉयलेट होती है ना टॉयलेट सीट, उसके नीचे से गटर में से होते हुए बाहर निकले हैं, ये स्टोरीज हैं। ऐसे ही हम ये निकलेंगे इस भाव सागर से, इस ये जो जेल है, ऐसे नहीं कि हमें ऐसे रिहा कर दिया जाएगा, तो जेल से निकलना आसान थोड़ा है। लेकिन हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, श्री प्रभुपाद जी का आंदोलन है, इसमें जो भी तपस्या है, ये तपस्या अगर हम कर लेते हैं तो फिर आसान है, फिर क्या मुश्किल है, यही सब तपस्या है। सिर्फ भगवान के नामों का ध्यान पूर्वक जप करें, चार नियमों का पालन करें, भक्तों के संग में रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें, बस, इसमें तो कोई गटर में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी कोई तपस्या नहीं है कि बहुत आपको आग में खड़े होना है, भूखे रहना है, ऐसे तो है ही नहीं, ये तो ज्यादा तपस्या नहीं है। लेकिन हाँ, कलयुग के वातावरण में ये भी बहुत तपस्या लगती है, कलयुग है, प्रॉब्लम सारी ये है कि कलयुग में तो तपस्या को समझा जाता है कि बेचारा है, देखो बेचारा साइकिल पे चल रहा है, मेरे पास तो गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, वो देखो साइकिल पे चल रहा है, बेचारा कहा जाता है ना, देखो बेचारा झोपड़ी में रहता है, मैं तो देखो महल में रहता हूं, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन अगर ऐसा ही होता तो हमारे जो छह गोस्वामी हैं, जो इतने बड़े बड़े पदों पर थे, वो यहां वृंदावन में आके पेड़ों के नीचे क्यों रहते है? पेड़ों के नीचे क्यों रहते, घर भी नहीं बनाए उन्होंने, वो तो रूप गोस्वामी ने तो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल दिया ना, तो युक्त वैराग्य ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो वृंदावन में आके घर बना के रहो सारी फैसिलिटीज के साथ, ये युक्त वैराग्य नहीं है, नहीं, युक्त वैराग्य क्या है, नहीं मेरी बात नहीं, युक्त वैराग्य का मतलब नहीं पता क्या है, तो ये अच्छा है ना, आपके पास धन है तो भगवान की सेवा में तो लगा दिया, यहां पे आगे आलीशान कोठी खड़ी कर ली, उसमें एसी लगा लिया, सारी सुविधाएं हो गई, शाबाश, वेरी गुड, ये पॉइंट है, अपनी सुविधा के लिए नहीं, शाबाश। हम युक्त वैराग्य को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, युक्त वैराग्य का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। उन्होंने युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया तो फिर पेड़ों के नीचे आके क्यों रहे, इतनी बड़ी नाव भर गई थी उनकी जब उन्होंने पेंशन ली रूप गोस्वामी ने, तो वो क्यों बांट दी सारी, ले आते ना थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं वृंदावन में भी ले आते। तो इसलिए ये उन्नति उन्नति नहीं है, ये अवनति है। मेटीरियली आगे बढ़ जाओ आप, क्या है? कब तक? बुढ़ापा, थोड़ा बुढ़ापे में तो कहां, बुढ़ापा आएगा तो क्या करोगे? एक बात याद आ गई, बता दूं थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए, कई लोगों को नींद आ रही है। एक औरत थी, वो बस मरने ही वाली थी, मरने वाली थी, तो भगवान आ गए उसके पास। और भगवान आके कहते हैं, तू चिंता मत कर, अभी तो 25 साल जिएगी तू। और उसकी उम्र 60 साल हो गई थी माताजी, 60 साल की हो गई थी वो। तो जा गई, वो कहते अच्छा 25 साल है अभी। तो उसने कहा 25 साल जीने हैं तो जरा तरीके से जिया जाए। तो उसका पेट निकला हुआ था, उसने डॉक्टरों को कहा पेट अंदर कर दो, पेट अंदर चला गया बिल्कुल। और सारे उसने अपनी शेप भी बड़ी अच्छी सी कर ली, सर्जरी करा के, और यहां फेस को भी लिफ्ट करा लिया, अपलिफ्ट करा लिया, जो रिंकल्स थे वो सारे खत्म हो गए। वो जी 60 साल की क्या, वो तो 25 साल की लगने शुरू हो गई। कहते हैं 25 साल बिताने हैं तो अच्छी तरह बिताया जाए। और जैसे ही ये सारा करा के वो निकली हॉस्पिटल से बाहर, तो एम्बुलेंस के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान के पास पहुंची, भगवान को कहा अभी झूठ बोलते हो, वो भी मरना मरना सन व्यक्ति के साथ, अभी झूठ बोलते हो है? आपने कहा 25 साल जीऊंगी, मैं तो 25 मिनट नहीं दी, 25 दिन नहीं दी आपके बाद कहने के बाद। भगवान कहते हैं वो गलती होगी, मैं तो पहचान नहीं पाया तुम्हें। नहीं समझ में आया? वो भाई 60 साल की बुढ़िया, उन्होंने बोला वो तो 25 साल की लड़की लग रही थी, कैसे पहचानेंगे? भगवान भी धोखा खा गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी जिस स्थिति में भी हैं, हम किसी भी स्थिति में हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, किसी भी स्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किसी स्थिति में भी। इन चक्रों में नहीं पड़ना हमें, बाल काले करो जी, ये लिफ्ट करो जी, इससे थोड़ा जवानी आएगी, है ना? और ये तो चक्कर है, हम तो इतना अभी जवानी को मिस कर रहे हैं, काश मैं भी जवान होता। अभी आने वाली है जवानी, इसमें क्या बात है? अभी थोड़े 8, 10, 15, 20 साल जितने ही बचे हैं, मृत्यु के बाद फिर दोबारा चक्कर शुरू हो जाएगा, फिर बचपन मिलेगा, फिर जवानी मिलेगी सबको, इसमें क्या है? ये तो ना खत्म होने वाला चक्कर है, तो पड़े रहो इसमें, तो ये तो ना खत्म होने वाला चक्कर है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे निकालो, गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला, शरीर यातना आर नाही सहे, जन्म मरण माला। ये तो माला है जन्म मरल की, जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु जन्म बीमारी, ये तो चक्कर में पड़े ही रहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? जवानी तो मिल जाएगी आपको, बढ़िया मिलेगी जवानी, बहुत सुंदर। ऐसे नहीं कि बाल काले कर लिए, अंदर से तो सफेद ही हैं, पूरी जवानी मिलेगी, पूरा शरीर नया मिलेगा आपको, थोड़े ही दिनों की बात है, इंतजार कर लो थोड़ा सा, क्यों पचड़ों में पड़ रहे हो? तो ये इसलिए ये छद्म नेताओं को छोड़ना है, जो इतना पैसा हमारा नष्ट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट से, ये करो तो आप ये बन जाओगे, ऐसा करो तो। पता है आपको, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी दुनिया में इंडस्ट्री है ये कॉस्मेटिक्स की, सबसे बड़ी। आज अगर औरतें कॉस्मेटिक्स छोड़ देना, कई लोगों के बेचारों के भूखे मर जाएंगे, वो सच कह रहा हूं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक्स की, तरह तरह के शैंपू, तरह तरह के पाउडर, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं औरतों को पागल बनाने की, पागल बना के रखा हुआ है, फायदा कुछ है नहीं है? जो भगवान ने दिया हुआ है, जैसे भगवान ने बनाया हुआ है वैसे ही रहो ना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, फिर भगवान वादा करके भी भूल जाएंगे, फिर मत कहना। तो आखिर में संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभुपाद जी जो है, हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसी चीज से इस अपने तात्पर्य को खत्म किया है। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता, जो शुरू से पढ़ता हूं, यदि यह समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा, यदि यह समाज राजनीति के द्वारा मतलब राजनीतिज्ञों के द्वारा जो है निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत की शरण लेनी चाहिए। तो कितने भाग्यशाली हो आप बताओ, आपने ऑलरेडी शरण ली हुई है, अब आपका कार्य है कि और लोगों को भी लेके आओ, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होते हैं जो दूसरे लोगों को भगवान की शरण में भगवान के पास लेके आता है, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, इतना प्रिय ना कभी हुआ है ना कोई होगा। वो बचाओ, समाज को बचाओ, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अगर हम समाज को नहीं बचाएंगे, हम समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो समाज जो है हमारे ऊपर हावी होके हमारा भी वही हाल होगा, किसी ना किसी कोई चक्कर में फंस जाएंगे हम। ठीक है, तो समय हो गया है, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो दो चार मिनट और चर्चा हो सकती है। ये सातवें छठे स्कंद का सातवां अध्याय है, छठे स्कंद का सातवां अध्याय जिसमें इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, अपने गुरु का अपमान किया इंद्र ने, तो बहुत बुरा हाल हुआ उसका। तो उसके बाद फिर वो बता रहे हैं कि कैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन असली बड़ों का, है ना, ऐसे ऐसे नेताओं का नहीं, छद्म नेता जो है, है ना, उनको छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, ओके, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की।